ஓம் சாந்தி. குட் மார்னிங். ஆஜ் கே பைலே செஷன் மே த ரியல் கன்செப்ட் ஆஃப் சக்சஸ். ஆப் சப்கா பஹத் பஹத் ஸ்வாகத் ஹை. तो आज हम जानेंगे कि रियल कंसेप्ट ऑफ सक्सेस क्या होता है. उसके लिए हमारे पास हमारे एक्सपीरियंस स्पीकर है जो आपको गाइड भी करेंगे, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे. तो सबसे पहले हमारे सम्माननीय अतिथियों का, सम्माननीय वक्ताओं का मैं आह्वान करता हूं, उनको निमंत्रण देता हूं, आमंत्रित करते हैं. सबसे पहले हमारे यूथ विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर चंद्रिका दीदी जी मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण कीजिए. आज के कार्यक्रम के कीनोट स्पीकर भ्राता सुनील जी मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करेंगे. अनसुया दीदी जी आप भी आके और मंच पर आसन ग्रहण करेंगे. हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ध्वनि शर्मा, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं, मंच पर आकर आसन ग्रहण करेंगे. हमारे सफलता का आधार जो परमपिता परमात्मा है उनकी स्मृति में हम बैठेंगे. हमारे युगरतन भाई है वो आपके सामने एक गीत पेश करेंगे. गीत के साथ साथ हम परमपिता परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे.
जाना तेरा काम नहीं जब तक मंजिल ना मिल जाए धरती पर स्वर्ग उतर आए. जब तक मंजिल ना मिल जाए धरती पर स्वर्ग उतर आए. तुझको करना आराम नहीं तुझको करना आराम नहीं. तूफान आए तो आने दो. आज हर कोई खतरे में है, ये देश नहीं पूरी दुनिया खतरे में है. इससे हमें होशियार रहना है और बचकर चलना है. इंसान आज है खतरे में, इंसानियत भी खतरे में. भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में. होशियार खतरों से खाली कोई यहाँ मुकाम नहीं. रुक जाना तेरा काम नहीं झुक जाना तेरा काम नहीं. तूफान आए तो आने दो.
जागो, दुर्व्यसन बुराई को त्यागो, सोने का मृग मायावी है, तृष्णा के पीछे मत भागो, नई जवानी नए खून को मुफ्त करो, बदनाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, तूफान आए तो आने दो।
आप सब इस दुनिया के शिल्पकार हैं, ये दुनिया बनती है युवाओं से, बिगड़ भी जाती है उन्हीं युवाओं से, तो हमें क्या करना है ये हमें डिसाइड करना है, और एक युग की शिल्पी बनकर इसको स्वर्णिम युग, इस विश्व को बनाना है हमें मिलकर।
युग शिल्पियों संसार की सूरत को ऐसे सवार दो, जिंदगी हो खुशनुमा और प्यार ही बस प्यार हो, सांसों को अपने सफल करो, कहीं हो जीवन की शाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो, तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं, तूफान आए तो आने दो।
बहुत बहुत धन्यवाद युगरतन भाई जी। आज हमारे सफलता के रास्ते पर नई शुरुआत हो रही है, और खास करके आज का दिन कौन सा है? आज का दिन सैटरडे। आज का दिन खास करके क्षमापना पर्व के रूप में मनाया जाता है। जानते हैं जैन संप्रदाय में क्षमापना पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसलिए सबको दिल से मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी दुक्कड़म। सभी आप सबको भी कहेंगे कि आज तक जो भी मेरे लाइफ में आए सबको मैंने माफ कर दिया और सबसे माफी मांग लिया। तो आज के नए नए रास्ते की शुरुआत आज से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे मंच पर आसीन हमारे वक्ताओं का हम स्वागत करते हैं, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी बहनें प्रशांति बहन और वैशाली बहन, जो फूलों से और बैज के द्वारा हमारे वक्ताओं का स्वागत करेंगे। गणेश की भी स्थापना हुई सब जगह, तो आज सभी चैतन्य गणेशों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने देखा होगा बहुत सारी गणेश की मूर्तियां होती है मार्केट में, बहुत सारी सेल के लिए मूर्तियां आती है, अलग अलग वैरायटी की होती है, लेकिन उनकी वैल्यू तब होती है जब उनकी विधिवत प्रतिष्ठापना होती है। तो हम भी अपनी प्रतिष्ठापना करेंगे तो हमारी भी हम भी पूजनीय लायक बनते हैं। तो आज हम टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज रियल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। आपको यहां से गाइड भी अच्छी तरह किया जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वैसे करंट कॉन्सेप्ट क्या है सक्सेस का, अगर करंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मुझे एक कहानी याद आती है, आप लोगों ने भी बचपन में सुनी है। दो मित्र होते हैं, दो मित्र जंगल में जाते हैं। जब जंगल में घूम रहे होते उस समय देखते हैं कि शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। तो शेर की दहाड़ने की आवाज आती है, उस समय एक दोस्त अपने स्पोर्ट्स शू की लेस टाइट करने लगता है। दूसरा बोलता है, तुम अपने लेस टाइट कर रहा है, तुमको क्या लगता है तुम शेर से आगे दौड़ेगा? तो उसको जवाब देता है, मैं शेर से आगे तो नहीं दौड़ पाऊंगा लेकिन तुमसे आगे जरूर दौड़ूंगा। तो आज हम सक्सेस इसी मायने में देखते हैं। सक्सेस के लिए हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मैं किसी से आगे बढ़ गया, कोई मेरे पीछे रह गया, मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जैसे कल हम प्रोग्राम में सुना कि सक्सेस मतलब क्या, प्रोसेस में भी और उसके रिजल्ट में भी हमको खुशी होनी चाहिए अंदर से, तो उसको सक्सेस मानेंगे। तो मेरा अपना मान्यता है कि सक्सेस मतलब क्या है, सक्सेस इक्वल टू नॉलेज प्लस एक्शन प्लस स्किल। आपको सुनील भाई अच्छी तरह से गाइड करेंगे इस बारे में कि कैसे हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज प्लस एक्शन प्लस स्किल। एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, इंटरनेशनल सर्वे किया था, उसमें बताया गया कि एक सामान्य आदमी जो सामान्य वर्क करता है वो आदमी अपने स्किल्स का केवल 25% यूज करता है, और जो व्यक्ति 50% स्किल यूज करता है उसको संसार सम्मान देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्किल्स का 90% से 100% यूज करता है उसको संसार अपनी आंखों पे बिठा लेता है। तो अभी हमको चेक करना है कि हम अपने स्किल्स का कितना यूज कर रहे हैं, कितना उसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना, वेटिंग टू विन इज कॉमन बट वर्किंग टू विन इज जीनियस। इसलिए हमको वर्क करना है विन के लिए, वेट नहीं करना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन एक जस्ट रियल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आज के सक्सेस के मायने क्या है, जो मुझे अपने आप को उसने झकझोर दिया उस इंसिडेंट ने। मेरा एक दोस्त है, मुंबई में दोस्त रहता है, तो 20 साल के बाद अपने गांव पहुंचा हो, हरियाणा में उसका गांव है, तो वहां गांव में पहुंचा। तो 20 साल के बाद जब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग सा व्यक्ति एक लॉरी पे ठेले पे सब्जी बेच रहा है। जब उसने वो काका को देखा तो उसको लगा कि इनको कहीं तो भी देखा है मैंने, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था कि कहां देखा है। जब थोड़ा सा जोर दिया बुद्धि पे तो याद आया कि ये व्यक्ति तो हमारे गांव का बड़ा धनाढ्य सेठ है, वो हमेशा दान धर्म करता है, उसकी अपनी पढ़ाई के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए भी उसने मदद की थी। तो उसको बड़ा अचरज लगा कि क्या है। वो पास में गया, उनको पूछता है, ताऊ जी आपकी ये हालत कैसे हो गई कि आप सब्जी का ठेला लगा के बेच रहे हो? तो ताऊ जी ने जो आंसर दिया आज हमारे युवा पीढ़ी के लिए बड़ा मार्मिक आंसर है। हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, सक्सेस के मायने अपने बदल गए, लेकिन ताऊ जी ने बोला कि हां बेटा मेरी ये हालत हो गई क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए। तो जिस मां बाप ने बच्चों को इतना पाल पोस के बड़ा किया, बड़े होने के बाद वो मां बाप बोलते कि हां मेरे बच्चे बड़े हो गए इसलिए मेरी ये हालत हो गई। तो हम अपने आप को थोड़ा सा चेक करें कि हम जिस सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, जो सक्सेस हम अचीव कर रहे हैं, उसके बाद का रिजल्ट क्या है। इसी में कहे, अभी आज मैं दो दिन तीन दिन जो बैठेंगे, तीन दिन में आप इसी जर्नी से फ्लो करेंगे और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे एक्चुअल सक्सेस क्या होना चाहिए, एक्चुअल सक्सेस के बाद मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए, मेरी फैमिली की पोजीशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमारी फैमिली खुश है मेरे से, मैं स्वयं से खुश हूं, तो सही मायने में वो व्यक्ति सबसे बड़ा सक्सेसफुल पर्सन होता है। तो इस सक्सेस के रास्ते में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भाई सुनील भाई से। सुनील भाई वैसे 13 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हैं और उन्होंने डिप्लोमा इन सिविल एंड डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइन किया है। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, बहुत कुछ अचीव भी किया हुआ है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया हुआ है कि एक्चुअली मुझे समाज में अगर रहना है तो समाज में मेरी पोजीशन क्या होगी जिससे सबका रिस्पेक्ट मुझे प्राप्त हो। हम सुनील भाई की तरफ देखते हैं, हमेशा आपस में मिलते हैं तो एक बात इनकी हमेशा नोट करते हैं, सुनील भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी वर्कलोड हो, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन अगर उनसे मिलो ना तो हमेशा स्माइलिंग फेस से सामने आते हैं। हम उस समय सोचते कि जब उनका कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था बहुत सारा, हम देखे मिले तो उस समय सुनील भाई को बोला कि भाई आप इतना सारा टाइट शेड्यूल है आपका, आप स्माइल कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने उस समय बोला कि हाँ, मैंने जीवन का जो मर्म समझ लिया, इसलिए मुझे इस जो होना है तो काम तो होता रहेगा। तो मैं सुनील भाई को आमंत्रित करता हूं आपके साथ अपने सक्सेस की आइडियाज भी बांटे और आपको प्रेरित भी करे रियल सक्सेस की।
ओम शांति। जीतू भाई ने जो परिचय दिया, वैसे ये हमेशा मुस्कुराने की जो बात है वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने ये बात छेड़ दी है इसलिए मुझे ये कहना चाहिए कि ये तो उनका नजरिया है कि वो मुझे हमेशा मुस्कुराता हुआ देखते हैं, लेकिन इसमें काफी मेहनत लगती है। हमेशा मुस्कुराना ये बहुत मेहनत वाला काम है। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, और सभी परिस्थितियों में मुस्कुराना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परंतु ऐसा नहीं है, कभी कभी सोच में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, किस दिशा में जाए, लेकिन प्रयत्न हमेशा ये रहता है कि जितना हो सके हम स्वयं के प्रति संतुष्ट रहे और स्वयं के व्यवहार के द्वारा दूसरों को संतुष्ट कर सके। आज का ये विषय जिसके ऊपर मुझे कुछ अपने विचार व्यक्त करने हैं, उससे पहले मैं आप सबका अभिवादन करना चाहता हूं कि सबसे पहली सफलता आज की दिन की या इस कार्यक्रम की यह है कि आप सभी यहां उपस्थित हैं। तो पहले सबसे पहले आप सभी इस सफलता के लिए तालियों से स्वयं का अभिवादन करें। हो सकता है कि बहुत सारे भाई बहने जो इस कार्यक्रम में पधारे होंगे वो किसी न किसी कारण से अभी तक इस हॉल में नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन आप सभी समय पर पहुंच गए हैं, ये आपकी सफलता है क्योंकि आप समय पर पहुंचे हैं। आप सभी को समय का मूल्य है, तो हम सभी समय के मूल्य को जानते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। इतनी बड़ी बात जब सफलता की जा रही है, आप सभी यहां जितने भी उपस्थित युवा भाई बहने हैं और भी बहुत सारे स्कॉलर यहां पे होंगे जिनके पास सफलता के संदर्भ में बहुत सारे अनुभव होंगे या बहुत सारे विचार होंगे, लेकिन मैं जिस मंच से बात कर रहा हूं यह आध्यात्मिक मंच, जहां हर एक बात आध्यात्मिकता के साथ कही जाती है। तो आज कुछ अलग नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे हम सभी, और मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं यहां कोई प्रवचन करने के लिए नहीं आया हूं, ना ही कोई भाषण करने के लिए। हो सकता है मेरी समझ में कुछ फर्क हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सभी आपस में अपने विचारों को शेयर करने के लिए यहां पे उपस्थित हुए हैं। सफलता की जब बात आती है तो पिछले काफी दिनों से इसके बारे में मैं चिंतन कर रहा था, तो एक कहानी मेरे दिमाग में आई है, वो आप सबके सामने व्यक्त कर रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुनना क्योंकि ये हम सभी के साथ जुड़ी हुई बात है। एक भाई जिसका बहुत अच्छा एक छोटा सा परिवार, उसकी एक सुंदर पत्नी, दो छोटे छोटे बहुत ब्यूटीफुल बच्चे, छोटा सा घर,
उसके पास कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं थी, छोटी सी नौकरी, लेकिन उस नौकरी के अंदर उसका घर चलता था। अभी उसका घर भी चल रहा है, उसके बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं, सब कुछ वैसे नॉर्मल चल रहा है, लेकिन हर रोज उसके मन में एक विचार बार बार आता था। जब वो बड़े बड़े लोगों को देखता था, किसी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखता था, तो उसके मन में विचार चलता था कि अरे ये इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मेरे जीवन में क्या प्रतिष्ठा है, मुझे कोई जानता ही नहीं है। फिर जब कोई बहुत संपत्तिवान व्यक्ति को देखता था तो सोचता था कि अरे इसके पास तो कितना धन है, इसको तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अपने आप होता है, इतने सारे काम करने वाले हैं, तो मैं भी कभी इतना संपत्तिवान बन सकूं। उसी प्रकार से वो जब जब जिस जिस चीज को देखता था उसका अभाव स्वयं के जीवन में महसूस करता था कि ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, ऐसा मेरे पास नहीं है, वैसा मेरे पास नहीं है। अभी इसके अंदर उसके पास जो था उसकी उसकी वैल्यू नहीं थी, इसलिए वो असंतुष्ट रहता था। हालांकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, अपनी पत्नी से भी प्यार करता था, अपने बच्चों से भी प्यार करता था, अपने दोस्तों से भी प्यार करता था, जिंदगी अच्छी तरह से बीत रही थी, लेकिन हर रोज सुबह उठते और शाम को सोते वक्त वो परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दे दो, ऐसा कुछ कर दो कि मुझे जीवन में कुछ करने की आवश्यकता ही ना रहे, मैं बहुत संपत्तिवान व्यक्ति बन जाऊं, मैं बहुत सुंदर बन जाऊं, मेरा ओहदा इतना बड़ा हो जाए कि मेरे से बड़ा ओहदा किसी का हो ही नहीं। तो हर रोज परमात्मा से वो प्रार्थना करता रहता था। एक दिन अचानक परमात्मा उसके सामने आ गए, वो आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा कि अरे मैंने तो ऐसी कोई भक्ति नहीं की है, आप मेरे सामने आ गए। भगवान ने कहा कि मेरे हर बच्चा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम इतने टेंशन में जी रहे हो तो मैंने सोचा तुम्हारा टेंशन दूर कर देता हूं, तुमने जो जो इच्छाएं व्यक्त की है तो वो सारी इच्छाएं मैं पूरी करने वाला हूं। अब ये सुनते ही वो बहुत खुश हो गया, क्या बात है, लॉटरी लग गई। तो भगवान ने कहा देखो मैं तुमको एक राज्य दे रहा हूं, बहुत बड़ा राज्य, उसके तुम राजा बनोगे और तुम्हारा हीरे मोती जवारत से सजा हुआ एक बहुत बड़ा महल होगा, एकरों में फैला हुआ, चारों तरफ सुंदर ग्रीनरी होंगी, गार्डन्स ही गार्डन्स, तुमको कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं, इतने सारी सुविधाएं होंगी, इतने सारे साधन होंगे, तुम जो चाहोगे वो तुरंत तुमको मिल जाएगा, जिस चीज की आवश्यकता होगी, जो खाना होगा वो मिल जाएगा, तुम्हारे पास एक बहुत सुंदर पुष्प विमान होगा, उसमें बैठते ही तुम सोचोगे और वो तुम्हें वहां पहुंचा देगा, तुम्हें ड्राइव करने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी ये सब सुन करके वो बड़ा खुश हो गया, बोलता तुम्हें चाहिए ये वरदान? हाँ चाहिए, लेकिन फिर इसके लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। बोला मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं भगवान, मुझे अगर आप इतना अच्छा वरदान दे रहे हैं तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तुम पहले दो दिन ट्रायल कर लो। तो उसको दो दिन ट्रायल के लिए उस राज्य में भेज दिया। अभी गया, अपना महल देख रहा है, खुश हो रहा है। जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, इतना सुंदर आलीशान बिस्तर जो कभी उसने सोचा भी नहीं था, जैसे ही उसके ऊपर बैठा तो इतनी अच्छी नींद आ गई। जब नींद से उठा गया तो उसको इच्छा हुई भोजन की, डाइनिंग टेबल पे गया तो 56 प्रकार के भोग लगे हुए हैं। अभी वो एक खाए, दूसरा खाए, तीसरा खाए, फिर उसको लगा चलो मैं जरा आसपास में घूम के आता हूं, गार्डन्स में घूमने गया, इधर उधर घूमने गया। ऐसे करते करते एक दिन पूरा हो गया। अब दूसरे दिन सुबह उठते ही फिर वही प्रोसेस, उसको इच्छा हुई भोजन की, फिर वो भोजन करने गया, लेकिन उसको लगा जैसे वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है, वो एक मशीन की तरह चल रहा है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, वो खुशी अनुभव नहीं हो रही है, जिसके बारे में मैं सोचता था कि मुझे ये सब मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा, मेरे जीवन में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है इतना सब मिलने के बाद। तो ढूंढने लगा क्या चीज की कमी है, तो ढूंढने के लिए निकला। अभी वो सभी जगह देख रहा है लेकिन उसको कहीं कोई इंसान नहीं मिल रहा है, उसका कोई संबंधी उसके साथ नहीं है, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, उसके बच्चे उसके साथ नहीं है, उसके दोस्त उसके साथ नहीं है। अभी उसके पास इतना सब कुछ होने के बाद उसको महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ होते हुए भी मुझे खुशी प्राप्त नहीं हो रही है। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से कि वो कौन सी चीज की कमी है जिसके कारण उसको खुशी महसूस नहीं हो रही है। ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं क्या चीज होगी। प्यार, बिल्कुल सही बात है। और जी मेहनत, ठीक है बढ़िया। और शांति, वैसे तो शांति है, कोई टेंशन है नहीं, कुछ काम तो करना नहीं है। एफर्ट, कर्म नहीं है, ठीक है। सॉरी, अपनापन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। सॉरी, ठीक से सुनाई नहीं दिया मुझे। फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, खालीपन महसूस हो रहा है। वैसे वो सोच रहा था कि ये सब कुछ मिल जाएगा तो मेरे जीवन का खालीपन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद भी खालीपन महसूस हो रहा है। आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। सार में मैं ये कहना चाहूंगा, आप सभी ने आज सुबह बहुत सुंदर सेशन अटेंड किया है स्वयं के बारे में कि मैं कौन हूं। हम इस संसार में आते हैं किस लिए? कुछ अभिव्यक्त करने के लिए, जिसके बारे में आप सभी ने बताया, प्रेम। अब मेरे अंदर प्रेम भरा हुआ है, लेकिन मैं किसको दूं? साधनों को दूं, चीजों को दूं, मकान को दूं, बगीचे को दूं? तो मेरे अंदर जो प्रेम है उसको अभिव्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई संबंध ही नहीं है जिसके आगे मैं अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकूं। तो फिर वो घबरा गया, उसने कहा कि भगवान मैं गलत मांग लिया था, प्लीज ये वरदान वापिस ले लीजिए। भगवान ने कहा सोच लेना भाई, तुमने ही सब मांगा था, अभी वापिस उसी घर में, छोटे घर में जाऊंगे, वही मेहनत करना पड़ेगा, वही बच्चों के पीछे मेहनत करने पड़ेगा, पत्नी के पीछे कमाने जाना पड़ेगा। नहीं नहीं भगवान, वही अच्छा है मुझे, उसमें भले थोड़ी तकलीफ पड़ती है लेकिन उसमें मुझे प्रेम का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, कुछ करने का भाव अनुभव होता है। तो भगवान ने फिर से उसको उसी के घर में वापस भेज दिया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ये जो जीवन मिला हुआ है, ये हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां, हमारे अंदर छुपे हुए गुण को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम मिला हुआ है। लेकिन जब हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसकी हमको वैल्यू नहीं है, और ऐसा बहुत कुछ जो हमारे पास नहीं है जिसका हमको खालीपन महसूस हो रहा है, इस दोनों बातों के बीच में हम ऐसे फंसे रहते हैं कि हम जीवन का सही मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। एक छोटी सी और बात आप सबके सामने, जब जीवन की बात चल रही है तो मुझे पूछना आवश्यक लग रहा है। आप सभी यहां बहुत समझदार भाई बहने बैठे हुए हैं, बुद्धिमान भाई बहने बैठे हुए हैं। अब जब जीवन की हम बात कर रहे हैं, सफल जीवन की बात हम बाद में करते हैं, पहले तो हम जीवन की बात कर ले कि जीवन क्या है। कल आदरणीय दीदी ने अपने वक्तव्य में कुछ सार में कहा था उस बारे में, आप सभी ने सुना भी है। तो आप सभी से मैं जानना चाहता हूं, आप सभी क्या समझते हैं ये जीवन क्या है? जी जीवन रंगमंच है, ठीक है। और गिफ्ट ऑफ गॉड है, परमात्मा की गिफ्ट है हमको, बढ़िया। और क्या है जीवन? सॉरी, प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ, ठीक है। और जर्नी है, जीवन एक जर्नी है, बढ़िया, सही बात है। और थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो ट्रूथ है, जीवन सत्य है, एडवेंचर है, सॉरी हाँ, अपनी सात जो मूलभूत गुण की बात आज सुबह आपने सेशन में पढ़ी होंगी, तो उसको फील करने का, उसको व्यक्त करने का माध्यम है, ठीक है। एक साधन है, ठीक है, आपकी सभी की बातें सही है, लेकिन एक बहुत नॉर्मल रीति से इस चीज को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जीवन एक समय काल है, एक बच्चा पैदा होता है जिसको हम जन्म कहते हैं, और जब मृत्यु होती है तो उस जन्म से लेकर के मृत्यु का जो समय काल है जिसको हम जीवन कहते हैं, ये बात सही है? ये बात सही है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक का ये जो समय काल है जिसको हम जीवन कहते हैं, किसी का जीवन काल 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का, 50 साल का, 80 साल का, 100 साल का, हर एक का अलग अलग है, लेकिन जन्म से मृत्यु तक का एक समय काल जिसको हम सभी जीवन कहते हैं। तो ये समय जो हम सबको मिला हुआ है, ये हम सभी का जीवन है जिसको हम हर रोज, हर सेकेंड, प्रतिपल जी रहे हैं। अब इसको हम सफल कैसे बनाएं, इस जीवन को? अब सफलता की बात करने से पहले एक छोटी सी, जैसे आप यंगस्टर्स हैं, कमाई की बात आती है तो खास करके यंगस्टर्स को होता है कि चलो हम कोई अच्छी जगह पे जॉब करें जहां पे अच्छी सैलरी मिले और थोड़ा सा काम कम करने को मिले, वैसे ज्यादा होगा तो चलेगा लेकिन कम करने मिले तो अच्छा है। तो आप सबके लिए एक बहुत अच्छी ऑफर है, आप सभी सुन करके बताना ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो आज से समझो ये एक ऑफर है, आज से आपको एक जॉब मिलती है, आपको हर रोज 86,400 रुपीज दिए जाएंगे। अब इस 86,400 रुपीज को आपको यूज करना है, बस ये आपकी जॉब है। आपकी जॉब क्या है, आपका काम क्या है, ये 86,400 रुपीज को आपको क्या करना है, यूज करना है। अभी मेरा आप सबसे सवाल है, इंटरव्यू है ये 86,400 रुपीज का आप क्या करेंगे? लेकिन साथ में एक छोटी सी बात यह है कि ये 86,400 रुपीज अगर आज यूज नहीं करेंगे तो आज ही आज वापस ले लिए जाएंगे, कल आपको वो नहीं मिलेंगे, उसमें से एक रुपया भी नहीं मिलेगा। तो मेरा प्रश्न आप सभी से है कि ये 86,000 रुपीज का आप क्या करेंगे? बाबा की भंडारी में डालेंगे, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कौन है जिनका 40,000-50,000-60,000 सैलरी है अबाउट, आप बाबा की भंडारी में डाल देंगे जी? कुछ डाल देंगे, लेकिन भाई साहब ने तो पूरा ही डाल दिया, अभी मन से तो डाल ही दिया है, और क्या करेंगे? चलिए भंडारी में डाल देंगे एक ऑप्शन है, और जी परोपकार में खर्च करेंगे। अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, और जन कल्याण में लगाएंगे, और हाँ यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज करेंगे? मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये भाई ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप जरा विजुलाइज कीजिए कि सचमुच में आपको 86,400 रुपीज मिलते हैं तो आप क्या करेंगे उसका? गरीबों की सेवा। यहाँ तो सभी महान संत लोग उपस्थित है, सब समाज की सेवा करना चाहते हैं, सब जन कल्याण की कार्य करना चाहते हैं, किसी को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, और मैं आप सभी को वंदन करता हूँ कि आप इतने महान लोग यहाँ पे हैं। अभी मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझे और कुछ सिखाने की आवश्यकता है, परंतु फिर भी जी इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और जी खुद के लिए खर्चा करेंगे, ठीक है, मौज मस्ती ऐस करेंगे, वेरी गुड। ये तो खास करके युवाओं का शब्द लास्ट में सुनाई दिया। तो ये 5 शब्द मैं आप सबके सामने रख रहा हूं कि या तो हम इसको यूज करेंगे या तो हम इसको मिसयूज करेंगे, या तो हम इसको लूज करेंगे, या तो हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, या फिर गुड यूज करेंगे। गुड यूज, ज्यादातर सभी ने गुड यूज की बातें बताई, एक भाई ने वेस्ट की बात बताई। अभी यूज तो नॉर्मल रीति से हम यूज करते हैं अपनी नॉर्मल आवश्यकताओं के लिए, लूज कैसे करते हैं, मिसयूज कैसे करते हैं, आप में से कोई सुना सकता है? पैसों का मिसयूज कहां करते हैं हम? गलत कामों में कर, जैसे कि नशे में, और गैम्बलिंग कर, ठीक है, और सेल्फिशली यूज किया जाए तो मिसयूज है। उसको यूज कह सकते हैं जिससे किसी का नुकसान होता हो, स्वयं का नुकसान होता है, किसी और का नुकसान होता हो, उसको हम मिसयूज कह सकते हैं। और कोई सुनाना चाहेगा? भिखारियों को देंगे, मिसयूज होता है भिखारियों को देकर के, ठीक है। आवश्यकता ना होने पर भी खर्च करना। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है जो 7-8 हजार रुपए का है और उससे मेरा सारा काम निकल जाता है, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे दोस्त के पास 15 हजार का 20 हजार का मोबाइल है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, तो मैं उस मोबाइल को बहुत कम पैसे में बेच करके फिर 15-20 हजार का मोबाइल ले लेता हूँ, जबकि मेरी आवश्यकता नहीं है फिर भी मैं ले रहा हूँ सिर्फ दूसरों को देख करके। तो कहने का मतलब है इसके ऊपर काफी चिंतन करने को टाइम मिले तो अगर कर सकते हैं, और अगर सचमुच में आपके हाथ में आ जाए तब तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, क्या करेंगे, नया सैंडल लाएंगे, नए शूज लाएंगे, नया बाइक लाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है, हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन वास्तव में ये जो स्कीम है उसको थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया था, ये जो पैसा है वो आपका समय है 86,400 सेकेंड्स एवरी डे। आपको हर रोज जीवन में 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं 24 घंटे के अंदर, हर घंटे की 60 मिनट और हर मिनट की 60 सेकेंड मल्टीप्लाई करें 86,400 सेकेंड्स होती है, वो हम सबको मिलता है, सबसे बड़ा खजाना समय जो हमारा जीवन है। आपके पास कितना भी धन हो लेकिन आपके पास समय ना हो तो आपको उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम जैसे पैसों के बारे में बोलते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसे कभी हम सोचते हैं कि हम अपने इस समय का क्या उपयोग करते हैं, हम इसको क्या यूज करते हैं, अच्छा यूज करते हैं, गलत यूज करते हैं, स्वयं के लिए क्या यूज करते हैं, दूसरों के लिए क्या यूज करते हैं, कभी हमारा चिंतन नहीं चलता। हमारा बहुत सारा समय ऐसे ही बीत जाता है, दिन के दिन, साल के साल और पूरा जीवन, यही शुरुआत होती है सफल जीवन की। आपका समय आप कैसे बिता रहे हैं, आप कैसे अपने जीवन को चला रहे हैं, कौन से रास्ते पे आप चल रहे हैं, उसके आधार पर आपकी जीवन का सफलता का आधार है। मैंने ये जो बात रखी है उस बात से आप सभी सहमत है कि हमारे जीवन का आधार हमारी ये जो एक एक सेकंड पास हो रही है वो है, और यही हमारा जीवन है, ये सही है। अभी मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कि ये जो हमारा समय है इस समय को कैसे हम यूज करते हैं उसके आधार पर हमारा जीवन सफल जीवन है या असफल है, सही है या गलत है, निश्चित होता है। तो आप सभी बताइए कि हम अपने जीवन में समय का उपयोग ज्यादा कहां करते हैं, सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में, गलत दिशा में, नकारात्मक दिशा में। आपसे सुनना चाहूंगा सही दिशा में, जो कहता है मेरा सारा ही समय सही दिशा में लगता है, वो जरा हाथ खड़ा करेंगे, क्यों इतने कम लोग, बाकी सबका क्या मानना है, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनका क्या मानना है, जी अच्छा ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूं। जो कहता है कि मेरा सारा ही समय सकारात्मकता की ओर जाता है, एक ऑप्शन ये है, और जो कहता है मेरा ज्यादा सर समय नकारात्मकता की ओर जाता है, ऑप्शन है आपके पास दो। जो कहता है मेरा ज्यादा समय सकारात्मकता की ओर जाता है वो जरा हाथ खड़ा करेंगे प्लीज, थैंक यू। और जो कहते हैं मेरा ज्यादा समय नकारात्मकता की ओर जाता है, मैं आप दोनों ही ग्रुप को धन्यवाद करना चाहूंगा। वैसे ये विश्लेषण का समय है, हमें स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, उसी के आधार पर हमारा जीवन सफल होगा या नहीं यह निश्चित होता है। जैसे कल निर्मला दीदी जी ने एक बात रखी थी कि भाई हम कोई लक्ष्य रखते हैं कि ये चीज प्राप्त करना है, फिर उसको प्राप्त कर लेते हैं, फिर देखते हैं वो तो प्राप्त किया लेकिन दूसरी चीज रह गई। स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी हेल्दी हो गया लेकिन पैसे नहीं है जेब में, पैसे कमाने के पीछे लग जाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाता है, रात को जागते हैं, नाइट शिफ्ट में चले जाते हैं, दिन को भी काम करते हैं, बहुत पैसा कमाना है लेकिन स्वास्थ्य खराब हो गया। तो जीवन की सफलता क्या है, जैसे हमने पहली स्टोरी के अंदर देखा कि हमारे जीवन में प्रतिपल हम क्या अभिव्यक्त करते हैं, प्रेम, खुशी, आनंद, उत्साह, अगर ये अभिव्यक्ति हमारे जीवन से हो रही है तो हमारा जीवन प्रतिपल सफल हो रहा है। लेकिन मैं किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल रहा हूं कि मुझे ये प्राप्त करना है, लेकिन जो समय पास हो रहा है उसमें मैं परेशान हूं, टेंशन में हूं, हताशा के अंदर घूम रहा हूं, और उस सारे समय के अंदर, उस डिप्रेशन के अंदर चलते चलते, टेंशन के अंदर चलते चलते शायद मैं उस चीज को प्राप्त भी कर लेता हूं, लेकिन फिर भी मुझे उस खुशी का अनुभव नहीं होता है। आप सबके सामने दो ऑप्शन रख रहा हूं। एक व्यक्ति है जो पुरुषार्थ कर रहा है एक कार्य को पूरा करने के लिए, लेकिन बड़ी शांति से, धीरज से, जो भी उसमें समस्या आती है उसको आराम से फेस करते हुए, मुस्कुराते हुए फेस करते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अभी उसने जो लक्ष्य रखा है वो पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन उसके अंदर विश्वास है कि वो फिर से प्रयत्न करेगा उसको प्राप्त करने का। दूसरा व्यक्ति, उसने एक गोल रखा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, स्ट्रेस अनुभव कर रहा है, रात दिन जागकर लगा हुआ है, लोगों के साथ के संबंध उसके बिगड़ रहे हैं, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लेकिन वो उस सारी मेहनत करके उस लक्ष्य को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसके संबंध खराब हो गए, अब आगे कार्य करने की उसके अंदर शक्ति नहीं। अब इस दो व्यक्तियों के अंदर सफल व्यक्ति कौन है? क्यों? उसने तो लक्ष्य को हासिल नहीं किया, उसने तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया। जी, कुछ खोया नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सफलता के पीछे हम सभी भाग रहे हैं। सफलता डेस्टिनेशन नहीं है, सफलता जर्नी है। जैसे जीवन एक जर्नी है, वैसे सफलता, इस जीवन को सफल रीति से जीना ही सफलता को प्राप्त करना है। हमारा हर सेकंड, हर समय, हमारा हर संबंध, हमारा हर एक कार्य सुखद हो, आनंदपूर्ण हो, तब हम जीवन की सफलता को प्राप्त करते हैं। यहां पे एक लास्ट बात करके मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा। सदियों से हम सभी जानते हैं, कर्मणीय वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ क्या है आप सभी जानते हैं ना? सभी जानते हैं? कोई बताना चाहेगा? कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। और कोई बताना चाहेगा? परमात्मा को अर्पित कर दिया जाए, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, आप सभी ने ये श्लोक सुना? हाँ बताइए प्लीज। ये भाई की बात से सभी सम्मत है? ये भाई की बात से जो सम्मत है वो जरा हाथ खड़ा करेंगे प्लीज, ठीक है। जो सम्मत नहीं है वो जरा हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। अच्छा, जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं खड़ा किया वो हाथ खड़ा करें। ये तो डिप्लोमेट वाला काम हो गया। फल, परिणाम क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हम परिणाम को निश्चित नहीं कर सकते हैं, हम परिणाम के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। दौड़ के अंदर 10 लोग दौड़ रहे, हर कोई पहला नंबर आना चाहता है, फिर भी 1, 2 और 3 नंबर पड़ते हैं। तो हरेक का लक्ष्य तो 1 नंबर प्राप्त करना है, हरेक अपनी रीति से पुरुषार्थ करता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण हम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे या पीछे आते हैं। उसी प्रकार से हमारे हाथ में अगर कोई चीज है वो तो है कर्म, और उसमें भी कर्म मना, हमें कौन सा कर्म करना है, कर्म नहीं करना है नहीं, इसका मतलब कोई ऐसा निकालते हैं कि कर्मणीय वादी कारस्ते का मतलब है कर्म करना या नहीं करना, वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे हाथ में यही है कि हम कौन सा कर्म कर सकते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत, सकारात्मक या नकारात्मक, सिर्फ हमारे हाथ में ये है। और उस कर्म के आधार पर जो मिलने वाला फल है उसके लिए हम अपेक्षित रहते हैं, लेकिन उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है कि उसके ऊपर बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं जो आध्यात्मिकता सिखाता है। यहां पे आपको आज आदरणीय दीदी भी अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बातें सुनाने वाले हैं कि श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ चिंतन, सकारात्मक भावनाओं के द्वारा हम अपने जीवन के हर पल को, हर लम्हे को कैसे सफल करें, और उस हर एक सेकंड को, हर एक लम्हे को सफल करके हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, यही इस ब्रह्मा कुमारीज के मंच से मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज के बाद जितने भी सेशन होने वाले हैं यहाँ पे, उसमें आपको इसी दिशा में ले जाया जाएगा कि हमारा जीवन का हर एक क्षण, हमारे जीवन का हर एक लम्हा, हमारा हर एक कर्म सकारात्मक हो, श्रेष्ठ हो, और उस श्रेष्ठता के आधार पर हमारा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो, यही हमारी सफलता की परिभाषा है। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स सुनील भाई जी। सबको आज एक मंत्र मिला सफलता का, कौन सा, कौन सा मंत्र बताया उसे? सकारात्मक सोच। बेसिक सफल कौन बन सकता है? जो एक एक सेकंड सफल करे, एक एक सेकंड की वैल्यू रखे, वो सफल बन सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई जी। जब ये सुना रहे थे, अपनी आइडियाज बता रहे थे, तो एक कोट मुझे याद आया जो मिस्टर रूजवेल्ट ने बोला था कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल। तो आज हम यहां बैठे हैं आइडियाज डिस्कस करने के लिए। वैसे जीवन में सफलता प्राप्त करना और सफल जीवन जीना दो अलग अलग चीजें हैं, और गलत मार्ग से प्राप्त की गई सफलता उस व्यक्ति का स्वयं का सर्वनाश कर देती है। तो अगर हमें सफल जीवन जीना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता के सिवाय सफल जीवन के लिए कोई चारा नहीं है। तो अभी आपके सामने हमारी आदरणीय अनुसूया दीदी आएंगे और आपको इस आध्यात्मिकता के रस में ले जाएंगे कि अगर हमें सफलता अचीव करनी है तो कैसे हम परमात्मा से शक्ति लेवे, परमात्मा से कैसे हम पावर लेकर इस सफलता के रास्ते पे आगे बढ़े। तो मैं आमंत्रित करता हूं अनसुया दीदी से। अनसुया दीदी पिछले काफी लगभग 85 से यूथ विंग से जुड़ी है और दिल्ली जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर है यूथ के, और काफी सालों से ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं कर रहे। तो अनसुया दीदी।
ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, परमात्मा की अति प्रिय संतान, डायस पर सुशोभित सभी माननीय वक्तागण व आप सभी भारत के कोने कोने से पधारे हुए परमात्मा की इस बगिया के विशेष पुष्प, आज हम एक बहुत इस समय की जो आवश्यकता है, नीड ऑफ द आर, हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है पर रियल सफलता क्या है, आज इसको बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए, अनुभव करने के लिए इस सुंदर एकेडमी में हम सब एकत्रित हुए हैं। जो मैंने अपने जीवन में सफलता को समझा है, एक बहुत सुंदर सा अनुभव है कि एक तो हमारा जीवन का लक्ष्य श्रेष्ठ हो। जो हमारा गोल है जीवन का वो अच्छा हो, ठीक हो, उसके लिए भी हम कभी अलग जब समय मिलेगा तो बातचीत करेंगे। बट एट द सेम टाइम फॉर अचीविंग दैट गोल्स हमारे मीन्स जो साधन हो वो भी एक्यूरेट हो, सत्य हो। अगर हमारा गोल ठीक है लेकिन मीन्स ठीक नहीं है, साधन ठीक नहीं है, आई वॉन्ट टू बिकम अ वेरी रिच पर्सन या बहुत मैं अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं, बहुत आगे जाना चाहता हूं जैसे कि अभी हमने सुना, लेकिन दूसरे को पीछे हटाकर या दूसरे को देखकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और उसके लिए मैं अनहेल्दी कॉम्पिटिशन करता हूं, मीन्स मेरे ठीक नहीं है और उसमें यदि मैं कुछ भी प्राप्त करता हूं तो वो सफलता नहीं है। इसलिए अगर हम अपने को इस तरह से श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हम अगर कहीं सफल हो भी गए तो उसमें बाकी जो सब चीजें हैं, शांति, आनंद, सुख, उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए जीवन की सफलता अर्थात साधन और साध्य दोनों एक्यूरेट हों, सत्य हों, राइट हों। और इसमें मेडिटेशन हमको बहुत मदद करता है। मैं इस मंच से आपको ये जरूर स्पष्ट करना चाहूंगी कि व्हाट इज मेडिटेशन। आज सवेरे का सत्र, कल शाम को जो सत्र हुआ था और आज तो सवेरे हमने बहुत डिटेल में सुना भी है, तो कभी कभी हमने ये सोचा है या समझा है कि मेडिटेशन मीन्स सिटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग समथिंग। हम बैठते हैं और कुछ भगवान को याद करते हैं, ये मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन जरूर है पर ये ही मेडिटेशन नहीं है, इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें। मेडिटेशन मीन्स अपने सत्य को जानना। जैसे हम सभी यहां बैठे हैं, इनमें से कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, जो भी है अलग अलग तरह से, अगर हमको ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट है कि मैं स्टूडेंट हूं, बिजनेसमैन हूं, तो ये हम ऑल द टाइम इसको अपने मन के अंदर स्वीकार करके चलते हैं। मेडिटेशन हमें यही बात समझाता है कि एक्चुअली में हम कौन हैं, हु एम आई। तो वो कोई 10 मिनट जो हम यहां बैठते हैं उसमें सिर्फ मन के अंदर चिंतन करना, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मेडिटेशन। पर मेडिटेशन मीन्स इस रियलिटी को, इस सच्चाई को कि मैं आत्मा हूं और टू हुम आई बिलोंग टू, जो कल हम और सवेरे का जो सेशन होगा उसमें अच्छी तरह समझेंगे कि मैं किसका हूं। इस रियलिटी को, इस सच्चाई को हर पल हर क्षण मन के अंदर स्वीकार करके कर्म करना, ये ऑप्शनल नहीं है। इनफैक्ट दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑफ माय लाइफ। जैसे एक हाउसवाइफ है, उसको हाउसवाइफ स्वयं को सदा ही समझना होता है, मैं आत्मा हूं इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को आत्मा समझूं, यही गलती है जो हमें सफलता से दूर ले जाती है। तो स्वयं को इस सच्चे स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में सदा ही महसूस करना और मैं जिसकी हूं उस सच्चाई को भी मन के अंदर सदा जागृत रखना। कोई भी कर्म आप करते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, ड्राइव करते हैं, लेकिन इस रियलिटी को, इस सच्चाई को अपने सामने समक्ष रखते हुए कर्म करना, ये जीवन की बहुत बड़ी सदा काल की रियल सफलता है। तो आइए 2-3 मिनट के लिए हम पुनः एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। आप सब जहां बैठे हुए हैं थोड़ा सा पीछे का सहारा छोड़ देंगे और जैसे हमने आपको बताया, इस प्रैक्टिस को हमें केवल मेडिटेशन हॉल में या हॉल के अंदर नहीं, लेकिन सदा ही इस रियलिटी को अपने साथ बनाए रखना है। आज फिर से एक बार अपनी सच्चाई को हम महसूस करेंगे। अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? ये जो बाहर से नजर आ रहा है ये तो कुछ समय के लिए मिला हुआ एक बहुत सुंदर गिफ्ट, ये शरीर, इसमें बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट फिट किए हुए हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को प्राप्त कर कर्म करने वाली मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हूं। जहां पर तिलक लगाया जाता है अपने को यहीं पर एक बहुत छोटे से सितारे के रूप में अनुभव कीजिए। मैं एक ऐसा सुंदर चमकता हुआ सितारा हूं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हूं। मैं ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा, ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की संतान हूं। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं, ऐसे मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु रूप है। ज्योति बिंदु परमपिता हम सब पर शांति और सुख की किरणें बिखेर रहे हैं। जैसे सूर्य से रोशनी की किरणें चारों ओर बिखरती हैं, ऐसे उस परम शक्ति परमात्मा से शांति और सुख की किरणें मुझ ज्योति बिंदु आत्मा पर बरस रही है। मैं अपने पिता से इस सच्ची किरणों को प्राप्त कर रही हूं। मेरा ये कितना सुंदर सौभाग्य है, मैं परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर अर्जित कर रही हूं। ये परमात्मा का सच्चा प्रेम, सच्चा एहसास, यही मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। मैं आत्मा स्वयं को सशक्त अनुभव कर रही हूं। मैं एक अति सूक्ष्म शक्तिशाली आत्मा हूं। अब मैं सदा इसी तरह से स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में अनुभव करती रहूंगी और परमात्मा का सच्चा साथ सदा प्राप्त करती रहूंगी। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत थैंक्स अनसुया दीदी जी कि हमको इतनी डिवाइन ग्रेट जर्नी में लेके गए। जब शुरू में बात हो रही थी समय सफल होने की तो मुझे एक चीज याद आई। एक बेंगलोर की हेल्थ संस्था है निमास करके, तो उन्होंने एक सर्वे किया था खास करके हमारे यंगस्टर्स के ऊपर, हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, कि हमारा समय कहाँ जाता है। आपको पता है सर्वे, शायद आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि उस सर्वे के आधार से हमारे ये जो यंगस्टर्स है, यूथ जनरेशन है, उनका सबसे ज्यादा समय लगभग 3 घंटा टीवी या कंप्यूटर में जाता है दिन का, और लगभग 6.5 घंटा एवरेज मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाता है। तो हम जब एक एक सेकंड की बात करते हैं तो इस पे अटेंशन रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी हमारे सामने हमारे मुख्य अतिथि है डॉक्टर ध्वनि शर्मा। इन्होंने अपने जीवन में अपने आप को एक सैंपल के रूप में मेंटेन किया है और आज हमारे यंगस्टर्स के सामने एक सैंपल के रूप में डॉक्टर ध्वनि शर्मा है। इनके लिए 4 लाइनें, तारों के बिना विद्युत संचार नहीं होता, रेखाओं के बिना चित्र तैयार नहीं होता, तारों के बिना विद्युत संचार नहीं होता, रेखा के बिना चित्र तैयार नहीं होता, जीवन में नवनिर्माण करने वालों प्रतिभा के बिना किसी का सम्मान नहीं होता। तो हमारे ऐसे सम्माननीय अतिथि, उनका परिचय तो बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत प्रेरणा रूप है। डॉक्टर ध्वनि शर्मा जी एक्चुअली गुजरात से है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। सबसे बड़ी बात कि दिव्य भास्कर ग्रुप में एक सर्वे किया था, उसमें डॉक्टर ध्वनि शर्मा को मोस्ट पावरफुल 50 वुमेन ऑफ सब्सटेंस इन एजुकेशन फील्ड का अवार्ड मिला था। शी इज ऑनररी ट्रस्टी अर्चना एंड एनजीओ विच वर्क्स ऑन अ चाइल्ड न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। शी इज नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा एंड इंचार्ज ऑफ अभ्यास वर्क फॉर पार्टीज वुमन विंग, देन मेंबर ऑफ स्वर्णिम गुजरात कमेटी। जो स्वर्णिम गुजरात का अभियान निकला था उनके ध्वनि शर्मा जी ने खास अपना एक्टिव पार्टिसिपेंट किया था। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है जैसे कि प्रेयर ऑफ लाइफ, तिरंगा हमारा कश्मीर, इंडिया चाइना रिलेशंस आदि बहुत सारी किताबें डॉक्टर्स ने लिखी है। और शी इज गोल्ड मेडलिस्ट इन पेंटिंग, इन शूटिंग एंड प्लेड फॉर गुजरात वॉलीबॉल टीम एट स्टेट लेवल एंड ट्रेनिंग ऑफ पायलट एट बड़ौदा फ्लाइंग क्लब। तो ऐसे रिस्पेक्टेड स्पीकर को, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी को मैं आमंत्रित करता हूं और आपको सक्सेस के बारे में गाइड भी करेंगे, अपनी प्रेरणाएं भी देंगे।
मंच पर उपस्थित आदरणीय बीके चंद्रिका बेन, अभी अभी जिनका भाषण नहीं पर कह सकते हैं कि जिन्होंने हमें एक प्रेरणा दी कि सक्सेस क्या होती है, ऐसे बीके सुनील भाई, अनुसिया दीदी और इस मंच का संचालन कर रहे ऐसे कोऑर्डिनेटर जीतू भाई, यहां आए हुए पूरे भारत से मेरे साथी भाई और बहनों, और यहां पर ब्रह्मा कुमारी की सभी दीदियां, और वहां आनंद में बैठी मेरी खुद की बहन जागृति बहन, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं आप सबसे मिल सकूं, इसलिए उनका भी धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सभी के सामने हूं। मेरा विषय है द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। जब विषय चुनने की बात आई तब मुझे लगा कि आज जो भारत अपने सबसे युवा फॉर्म में है, आज कह सकते हैं कि युवा भारत, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो 35 साल से नीचे की है। इसलिए हम सब की एक नैतिक जवाबदारी बन जाती है कि हम जो भी करें, जहां भी करें, जैसा भी करें, वो बेस्ट ही होना चाहिए। इसलिए सक्सेस को मैं उसके साथ जोड़ूंगी। आज मेरा जो वक्तव्य यहां से होगा उसका अप्रोच थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। स्पिरिचुअल तो होगा ही से, क्योंकि ये मंच ही ब्रह्मा कुमारीज का है जो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से मेडिटेशन से हम वह हर चीज प्राप्त कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो शुरुआत करूंगी सक्सेस से। सबसे पहले सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। इसे हिंदी में हम सफलता भी कहते हैं। सफलता के अलग अलग मापदंड हैं। यहां बैठे हुए सभी साथियों का एक एम होगा कि मैं सबसे सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, या मैं अपने प्रोफेशन में बेस्ट बनना चाहता हूं, या मैं एक बेस्ट पिता बनना चाहता हूं, या एक बेस्ट ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसे पूरी दुनिया पूजे। इन सारे बेस्ट को अगर मैं एक साथ करूं तो हम बेसिक में सफल होना चाहते हैं। तो वो कैसे पाया जाए, सफलता कहां मिलेगी? तो आइए अगले कुछ क्षणों में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जिसे कहते हैं सफलता की यात्रा। तो शुरुआत करूंगी, सफल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है, क्या कभी किसी समय, पहला प्रश्न जो मैं आपके समक्ष रखूंगी, आप मुझे बताइएगा कि कभी न कभी लाइफ में आपको किसी न किसी से बुरा लगा है? सिर्फ हाँ या नहीं बताइएगा, हाथ नहीं खड़ा करना है। क्या आपको कभी न कभी किसी क्षण आपको किसी व्यक्ति विषय वस्तु से बुरा लगा है? सबने हाँ बोला। और उसका क्या कारण था? कि कोई एक ऐसा शब्द था या कुछ ऐसे वाक्य थे जो ऐसे तीर की तरह चुभ गए, जो ऐसे तीर की तरह चुभ गए कि आज तक हम उससे उभर नहीं पा रहे। तो क्या ऐसा हुआ? गलत शब्दों का चयन। तो सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसा बोलते हैं और हम कैसे शब्दों का चयन करते हैं, वह सफलता की पहली कुंजी है। सुनील भाई ने अपने बातों में हमें दो बहुत अच्छी कहानियां बताई। उस कहानी से ही मैं बात करना चाहूंगी। एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है, वो कहता है कि मैं सबसे महान बनना चाहता हूं। वो संत कहते हैं कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम महान तो जरूर बनना पर पहले इस आश्रम को साफ कर दो। वो व्यक्ति आश्रम पूरा साफ कर देता है, फिर से वह उनके पास जाता है कि अब मुझे महान बना दो। तो कहते हैं स्वामी कि मैं महान तुम्हें बना देता हूं, एक काम करो, शाम हो गई है, कड़ी खिचड़ी बना दो। अब आपके जो दिमाग में आ रहा है वह उसके दिमाग में भी आ रहा था। उसे लगा कि मैं कहां फंस गया, मैं सही जगह आया कि नहीं आया, अब तो मैं फाइनली डिसाइड कर लेता हूं कि अब मुझे करना क्या है। वो धीरे से फिर से जाता है, बोलता है मेरा कल बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे अब जाना है, इसलिए मैं आज शाम को जाऊंगा। तो स्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं, तू चला जाना, मेरा एक छोटा सा लास्ट काम करके जा। मेरे इस आश्रम में ना एक बोरी पड़ी है, उस बोरी को जाके चौराहे पे छोड़ देना, उसके बाद वहीं से तुझे बस मिल जाएगी। और मैं तेरे पास मोबाइल तो जरूर होगा, तेरे मोबाइल पे बता दूंगा तुझे करना क्या है, चौराहे पे किससे मिलना है, उसके बाद तू अपनी बस पकड़ना और वापस चला जाना। तो वो कहता है वाओ, फाइनली मैं जा रहा हूं। जब वो बोरे को लेके चौराहे पे जाता है और जैसे ही चौराहे पे रुकता है और स्वामी जी को फोन करता है कि बताइए अब क्या करना है, किसको ये पार्सल दे दूं मैं, तो क्या स्वामी जी कहते हैं काम कर, उस बोरे को खोल दे। जैसे ही वो उस बोरे को खोलता है उसमें थे छोटे छोटे पंख, वो हवा में उड़ जाते हैं। स्वामी जी फोन पर ऑन थे, बोलते अब एक लास्ट काम और कर दे, वो पंख जहां जहां हवा में बिखरे हैं उनको पकड़ के वापस उस बोरे में भर दे। ये तो बड़ा मुश्किल था, बोलते स्वामी जी ये तो नहीं हो सकता। तो स्वामी कहते हैं अगर तू महान बनना चाहता है, अगर तू सफलता पाना चाहता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि शब्द इस पंख की तरह होते हैं, एक बार जो उड़ गए तो वापस लाना उतना ही मुश्किल होते हैं। इसीलिए आज से अब से जब भी तू शब्दों का चयन करे वो इस तरीके से करना कि जब तुझे वापिस लेने का मौका ही ना मिले। सफलता की ये पहली सीढ़ी के साथ समय और समय और स्थिति के अनुसार बोलना, यह सफलता की दूसरी कुंजी है। ये क्या बात है समय स्थिति के अनुसार बोलना? हमारा दोस्त अगर बहुत दुखी आ रहा है कहीं से और हम कह दें कि चल आज हम पार्टी करेंगे, ये क्या हुआ? हमने उसकी समय और स्थिति का ध्यान नहीं रखा। इसलिए दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, क्यों हम कैसे सफल होंगे, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों को समझना भी उतना ही जरूरी होता है हमारे लिए। इसीलिए दूसरा जो पॉइंट है वह है समय और स्थिति के अनुसार बोलना। कैसे? अगर मैं इस मंच से कहूं कि भारत आगे बढ़ रहा है तो आप बोलेंगे हाथ कहां जा रहे हो, हम क्या बोल रहे हैं। अगर मैं ये कहूं भारत आगे बढ़ रहा है तब लगेगा कि नहीं, यह व्यक्ति सही सोच है, सही विषय है। यह आपके सामने इसलिए रखना था क्योंकि आप इसका चयन ठीक से करें। अब अपने तीसरे पॉइंट पर आ रही हूं और वह है जो आप सबके पास है, मैनर्स। आप सब वरिष्ठ हैं और इस समय इस मंच से यह कैसे बताओ कि मैनर्स क्या है, पर हां एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखती हूं। सफलता की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, हमें आसपास यह नहीं पता कि कौन कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसा भाई ने बताया कि उसका क्या रोल है हमारे जीवन में, है नहीं है देखते हैं, पर हम अपने एम की तरफ एक लक्ष्यांक लगा के बैठे हैं। एक पुत्र कॉलेज जा रहा है, वो बड़ा हो चुका है, ऑफकोर्स हैंडसम तो देखेगा ही क्योंकि वो अपने यूथ में है। वो अपने पिताजी से कह रहा है देखिए पिताजी मैं आज शाम को देर से आऊंगा क्योंकि मैं जा रहा हूं कॉलेज। तो पिताजी कहते हैं एक काम कर, तू कॉलेज जा रहा है ना, शहर जा रहा है, तो तू मुझे भी ले जा क्योंकि मेरी वहां एक छोटी मीटिंग है, मैं बस उस मीटिंग को निपटा कर बस से वापस आ जाऊंगा, तू अपनी कॉलेज देख लेना। ठीक है, वो बेटा अपनी बाइक वाइक तैयार करता है। जो आपके मन में चल रहा है उसी के मन में भी चल रहा था कि ओ माई गॉड आज मेरे पिताजी को मुझे बाइक पे बिठाना है, मेरी गर्लफ्रेंड को क्या बोलूंगा। ओके, यहां तक तो ठीक था, पर जैसे ही पिताजी अंदर जाते हैं अपनी अलमारी खोलते हैं, और उसमें से देखते हैं ये दो टी शर्ट्स हैं, एक शर्ट है, ये शर्ट मैंने नया सिलवाया है, मैं इसे पहन के उसके साथ जाता हूं क्योंकि बाइक पे उसके साथ जा रहा हूं तो मुझे बेस्ट दिखना चाहिए। और तभी वो तुरंत तैयार होकर जैसे ही बाहर आते हैं और देखते हैं कि बेटा अपनी बाइक लेके चला गया, वो रुका भी नहीं। उनका मन थोड़ा दुखी हुआ, उनको थोड़ा बुरा लगा, और वो बैठते हैं शांति से अपने चेयर पर और अपने बेटे को एक पत्र लिखते हैं। वो पत्र में लिखते हैं, मेरे प्यारे बेटे, आज जब तू तैयार हो रहा था तो मैं अपने आप पे नाज कर रहा था कि मैंने तुझे जन्म दिया। आज जब तू इतना सुंदर दिखता है तो मैं तुम्हारी माँ के साथ बैठ के बात करता हूँ कि वह क्षण कितना सुंदर था जब हमने सोचा कि इसे दुनिया में लाना है। आज जब तू जा रहा था तो मुझे लगा कि तू मुझे अपने साथ ले जाएगा, पर शायद तू मुझे भूल गया। पर मैं वह दिन जरूर याद करता हूँ, कि जब तू चलना नहीं जानता था तो उंगली पकड़ के चलना तो मैंने ही सिखाया। आज जब चार लोगों के सामने तू मुझे साथ में नहीं ले जाता क्योंकि खाना खाते खाते कई बार मेरे आवाज आती है मुंह से या कांटे और चम्मच को मुझे ठीक से पकड़ना नहीं आता, तब मैं वह दिन जरूर याद करता हूँ कि एक छोटे से कोर को पकड़ के मैं तेरे पीछे दौड़ा करता था। मेरे प्यारे बेटे, आज जब तेरे स्मार्टफोन तेरे हाथ में है तो मुझे उसे छूने नहीं देता, कहता है कुछ दबाओगे तो देखो ट्विटर पर मैसेज चला जाएगा या फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा, तब मैं वह जरूर याद करता हूँ कि आज वो फटाफट एसएमएस जो तू लिखता है वह एबीसीडी तो मैंने ही तुझे सिखाई है। मेरे प्यारे बेटे, आज जब तुझे मुझे अपने साथ ले जाने पे गर्व नहीं लगता तब मैं वह दिन जरूर सोचता हूँ कि वह दिन मुझे याद आता है कि मेरी ही पैंट पकड़ के अगर तू मुझे रोक देता था कि पिताजी आज आप ऑफिस न जाए तब तो मेरे पास बहुत समय था, और आज तेरे पास समय नहीं है, पर मेरे प्यारे बेटे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। कहीं हमसे तो ये भूल नहीं हो रही, अगर हो रही है तो ना मैं हाथ खड़ा करवाऊंगी ना आपसे पूछूंगी कब कैसे क्यों, अगर हो रही है तो आइए सफलता की एक कुंजी में उसे भी डालें। आज हम अपने आप को फिर से साधें और ये सोचें कि हम इस दौड़ में कहीं अपनों को तो नहीं भूल रहे हैं। जहां मैं पिता को याद करती हूं तो माता को कैसे भूल जाऊं। बेटा बहुत सक्सेसफुल हो गया, इतना सक्सेसफुल हो गया कि शहर जाके उसने अपना फ्लैट खरीद लिया, गांव में माँ बैठी है, पत्र व्यवहार करते हैं, मनी ऑर्डर जाता है, पैसा जाता है। माँ को बड़ी याद आ गई, कहती है कि आज तो मैं अपने बेटे से जरूर मिलने जाऊंगी। दिवाली का दिन था, बेटे ने शहर जाके शादी कर ली, बेटा हो गया। माँ को खबर तो हो गई पर इतने पैसे नहीं थे कि शहर जाके देख सके। सरपंच से पैसा लेती है और जाती है। माँ देख नहीं सकती, आंखों से अंधी है। जैसे ही वह दिवाली के दिन उसके फ्लैट के दरवाजे को खटखटाती है और फ्लैट का दरवाजा एक बच्चा धीरे से देखता है, कहता है, पिताजी कोई मांगने वाली आई है, दिवाली का दिन है, देख लो, संभल लो। पिताजी कहते हैं दरवाजा मत खोलना। थोड़ी देर बाद बहुत घंटी बजाते हुए माँ वापस चली जाती है गांव। सरपंच कहता है आपने कहा क्यों नहीं, आप मिले क्यों नहीं। फिर सोचती है ठीक है एक बार फिर से हिम्मत करती हूँ। फिर से वह शहर जाती है और वह फिर से खटखटाती है, बेटा खोलता है, बोलता है माँ आप। तो बोलते बेटा मैं तो दिवाली के दिन कल भी आई थी पर आज मैं अंतिम बार आई हूँ। मैं ये तुझे कहने आई हूँ कि गांव में मुझे अंधी बुढ़िया नाम के जब लोग चुराते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, पर बुरा मुझे कल जरूर लगा क्योंकि आज मैं वह चीज बताने आई हूँ जो तू भूल गया। दिवाली का आज भी वह दिन था और कल भी वह दिन था। तू आसमान में देख रहा था, अपने सपनों की उड़ान भरना चाह रहा था, तब एक छोटा फटाका आकर तेरी आंख में लग गया। डॉक्टर ने कहा कि इसको आंखों की जरूरत है, तब मैंने अपनी आंखें दे दी। तब यह नहीं सोचा कि ये बेटा मांगने वाला है, तो आज तूने सोचा कि बाहर एक मांगने वाली आई है। मैंने अपनी आंखें एक क्षण में तुझे दे दी, पर यहां से मैं तुझसे कुछ लेके नहीं जाऊंगी, बस ये कह के जाऊंगी कि तेरा भी बेटा बड़ा हो रहा है। देखिए ये है मैनर्स। इसी दो कहानियों में आप सब कुछ समझ जाइए। मैनर्स को हमने जीत लिया तो सफलता एक और पा ली। अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने बात कर ली है शब्दों के चयन को, समय स्थिति के साथ बातचीत करने में, मैनर्स में, स्पिरिचुअलिटी, प्रेयर। अभी बीके अनुसुया जी ने बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया। मैं आपको बताऊं, मंच पर मैं बैठी थी, सब लाइटें जल गई, तब तक मेरी आंखें बंद थी। मैंने कहा ओ माय गॉड अब तो मेरा समय है। मेडिटेशन में इतना पावर है, इतना पावर है कि आप ऑफकोर्स जहां चाहे वहां जा सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन हमें देता क्या है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें एक ऐसी गिफ्ट मिलती है, एक गिफ्ट ऑफ प्रेयर मिलती है, पूजा। पूजा क्या होती है, जब हम अपने मन मंदिर में झांकते हैं और हम कहते हैं जैसा उन्होंने बताया कि हमें स्ट्रांग बनना है, हम जो लक्ष्यांक रखते हैं वहां तक पहुंचेंगे। जब हम प्रेयर करेंगे तब हम में बिलीफ आएगा, जब हम प्रेयर करेंगे तब हम में बिलीफ आएगा। बिलीफ का मतलब है हमें अपने आप के ऊपर एक ऐसी धारणा बनेगी कि जो मैं कर सकता हूं वह मैं जरूर करूंगा। जब हमारे पास गिफ्ट ऑफ बिलीफ होगा तब हमारे पास आएगा विवेक, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं विजडम। विजडम का अर्थ है सही या गलत की पहचान, विजडम का अर्थ है सही या गलत की पहचान। इसी में एक शब्द और ऐड करूंगी कि हम लोग क्या करते हैं, जब दो या तीन लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब दो या तीन लोग एक साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या करते हैं, तीसरे की ले लेते हैं। आज से अभी से सफलता के इस मंत्र को और विजडम को हमें ध्यान में रखना है। हमें सकारात्मकता रखनी है जीवन में और पॉजिटिविटी से बात करनी है, यह सफलता की एक और कुंजी है। तो प्रेयर से हमें बिलीफ आया, बिलीफ से हमारे अंदर क्या आया, विजडम, दैट इज विवेक। जब हमारे पास विवेक होगा, जब हमारे पास सही या गलत की पहचान होगी, तब हम हमारे पास आएगा ट्रुथ और वह है सच्चाई। एक व्यक्ति ने यहां पर शुरुआत में कहा था कि जीवन क्या है, तो उसने उत्तर दिया था जीवन इज ट्रुथ। बिल्कुल सही बात है, जब सत्यता हमारे पास होगी, सही हमारे पास होगा, तब हमारे पास क्या आएगा, डिसिप्लिन। अब आपको लगेगा डिसिप्लिन क्यों आना चाहिए सफल होने में, तो डिसिप्लिन आज आपने खुद बता दिया है। आज आपने सफल होने का पहला चरण पास कर लिया है। आज जब आप 4:15 बजे उठकर यहां मेडिटेशन करने आए हैं, आपने उस डिसिप्लिन को कवर कर लिया। पिछले दिनों जब अलार्म की घंटियां बजती थी या मोबाइल पर अलार्म बजती थी तो हम उसे वापस साइलेंट मोड में डाल के फिर रजाइयों में घुसते थे कि बस थोड़ी देर और। पर आज जो हमने उसे कवर अप करके हमारे स्ट्रेंथ के विचारों से कि नहीं आज तो मैं उठ के मेडिटेशन करूंगा ही सही, तो कहते हैं ना डर के आगे जीत है और आलस्यता के आगे भी जीत है, तो आज आपने उसको जीत लिया है। तो मैं बात कर रही थी स्ट्रेंथ की, ट्रुथ की। जब आप में सच्चाई होगी तब आपके अंदर क्या आएगा, जब आपके अंदर सच्चाई होगी तब आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, और जब आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी तभी आप सफल हो पाएंगे और तभी आप देश के लिए काम कर पाएंगे। यह था मेरा चौथा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट पर आगे बढ़ रही हूं। सफलता के लिए आप लोग कितने लोग मानते हैं कि बहुत जरूरी है स्वस्थ होना और सुंदर दिखना, क्या आप मानते हैं, हाँ या नहीं? अगर हमें सफल होने के लिए स्वस्थ और सुंदर होना जरूरी है तो एक चीज आज हमें बदलनी है कि हमने हमारे मापदंड ये बना रखे हैं कि जो गोरा दिखेगा वह सुंदर दिखेगा। आज वो मापदंड इसलिए बदलना है क्योंकि एक छोटा सा बच्चा मेले में बाहर जाता है और बाहर एक गुब्बारे वाला खड़ा है जिसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, हरे हैं, लाल है, पीला है, तो वो दौड़ के उसके पास जाता है और कहता है अच्छा गुब्बारे वाले सुनो मेरी बात। तो गुब्बारा वाला तो अपना बिजनेस करने में व्यस्त था, पहले तो उसने उसको हुड़दंग करके हटा दिया कि चलो हटो यहां से, पैसे तो होंगे नहीं इस बच्चे के पास। फिर दौड़ के जाता है, कहता है सुनिए आपके पास इतने सारे कलर के गुब्बारे हैं, मुझे एक बात बता दो कि अगर काला कलर का गुब्बारा मैं देता हूं तो क्या वो हवा में जाएगा, वो उड़ेगा? तो गुब्बारे वाला सोचता है किधर से आया, वो कहता है सुनो मेरी बात बच्चे, गुब्बारे के रंग से फर्क नहीं पड़ता, गुब्बारे के रंग से फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर जो हवा होती है उसी से वह आसमान छूता है। तो आइए ये जितने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जितने भी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वह उसे हम अपनी अंदरूनी शक्ति बनाएं और उस अंदरूनी शक्ति को लेके हम अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ करें, मेडिटेशन और एक्सरसाइज से हम अपने आप को और स्ट्रांग करें, क्योंकि जब स्वस्थ होगा युवा तभी स्वस्थ होगा भारत। अब अपने वक्तव्य के अंतिम चरण में आ रही हूं और अंतिम चरण की बात जब आती है, हमने अभी तक बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए। अभी तक हमने स्पीच की बात करी कि कैसे हम समय स्थिति के अनुसार, मैनर्स की बात की, सफलता कैसे पाए। अब अंतिम क्षणों में थोड़ा और प्रैक्टिकल अप्रोच आपके सामने रखूंगी। आज हम सबके पास जॉब है, बिजनेस है, पर एक छोटा सा हैंडसेट भी हम अपने साथ में लेके घूमते हैं। जैसे अभी जीतू भाई ने बताया कि एक रिसर्च के अनुसार बैंगलोर में कहा गया है कि हमने 6 घंटे उसी में गुजार दिए, पर उसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि ऑफकोर्स वो हमारा समय तो ले रहा है पर हम उसके ऐसे आदि हो गए हैं कि हमारा बेटा घर में रह जाए तो चलेगा पर मोबाइल नहीं रहना चाहिए। पर मोबाइल में क्या हमें ध्यान में रखना है वो भी जरूरी है। अब कल उठ के अगर समझ लीजिए मेरे बीच जैसे वो ग्रीन कलर की टी शर्ट के एक व्यक्ति बैठे हैं, मैंने उनको कल सुबह फोन कर दिया, ठीक है, और कल सुबह जैसे ही मैंने उनको फोन किया और तुरंत उनकी रिंग टोन बजती है और उस रिंग टोन में रामलीला का कोई सॉन्ग बज गया, तो मुझे ये जरूर पता चल जाएगा कि इनको रामलीला बड़ी पसंद आई है। तो हमारी पर्सनालिटी में ये चीजें बहुत ध्यान में रखती है कि हमारी रिंगटोन कैसी हो, हमारी कॉलर ट्यून कैसी हो, हम कैसे फोन उठाते हैं। हम लोग जैसे क्या करेंगे, हमारा कोई साथी फोन कर रहा है तो हम बोलेंगे हाँ बोल, उसके माँ बाप ने भी उसका कोई नाम रखा है। सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि हम सामने वाले को अपने नाम से बुलाएं, क्योंकि हम बैठे हुए यहां हर व्यक्ति को एक चीज से तो बड़ा प्यार है और वह है अपने नाम से। तो आज से अभी से जिससे भी हम मिलते हैं आने वाले दिनों में हम जरूर उसे नाम से बुलाएं। युवा वर्ग में हम सब हैं तो कुछ चीजें हमें बहुत ही आकर्षित करती हैं, जैसे अगर दोस्त बुलाते हैं कि चल आजा, आज तो सक्सेस पार्टी है, बियर की बोतल तो खुलनी चाहिए। आज मैं आपसे या बहन एक चीज तो पोटली में बांध के जरूर आपसे ले जाऊंगी, अगर आपको कभी भी आपने जिस भी क्षण शुरू किया हो, सिगरेट या गुटखा या आप ड्रिंक्स शुरू किए हो, ये तीनों चीजें अगर आपके जीवन में कहीं होगी तो फिर से मैं यहां से किसी से हाथ नहीं उठवाऊंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि इस सेशन के बाद आपसे ये गिफ्ट जरूर ले जाऊंगी कि वो बांध के पोटली में जाने दूंगी। तो आइए हम संकल्प करें कि इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने नजरिए को बदलेंगे, हम हमारी सोच को बदलेंगे, और जब ये सारी चीजें होगी तब हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक सेठ जी बीमार हो जाते हैं और सेठ जी बीमार होने के साथ ही कहते हैं कि मुझे बड़ा स्पेशल रूम चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही पैसे वाला हूं। तो हॉस्पिटल की अथॉरिटी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुमको आपको दे देंगे, तुमको तो बोल नहीं सकते, आपको जरूर देंगे। तो उनको स्पेशल रूम दिया जाता है और तभी पता चलता है हॉस्पिटल के सारे रूम पैक हैं। एक बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो दौड़ के उसके लोग उसके फ्रेंड्स आते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया, प्लीज आप उसको तुरंत ले लो। हॉस्पिटल पैक है, कोई जगह नहीं है जाने के लिए, और तभी सेठ जी को कहा जाता है सेठ जी आपके पास स्पेशल रूम है, आप प्लीज इसको कंसिडर कर लो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आज तो मुझे थोड़ा सा दया दिखानी पड़ेगी क्योंकि आज अगर मैंने दया दिखाई तो शायद कल न्यूज़पेपर में मैं छप सकता हूं। तो कहते ठीक है इसको आप रख लो मेरे रूम में मेरे पास। सेठ जी उससे कोई बात नहीं करते, उससे बिल्कुल बात नहीं करते क्योंकि सेठ जी बहुत पैसे वाले हैं। थोड़ी देर जाती है और सेठ जी पूछते हैं और क्या चल रहा है तुम्हारे बेड के पास, तो बड़ी बड़ी बारी है, क्या दिख क्या रहा है तुमको बाहर? तो नाम नहीं पूछा, क्या हुआ वो नहीं पूछा, बारी के बाहर क्या है? तो सेठ जी को कहता है सेठ जी मेरा बेड ना बहुत अच्छी जगह है, इतनी अच्छी हवा आ रही है बाहर से, ठंडी ठंडी, और वो भी स्पेशली जब अपन आबू में हो तो कितनी ठंडी हवा आएगी, और इसी हवा में बाहर मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिख रही है, और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं उससे शादी करूंगा। तो सेठ जी को आपको पता है क्या हुआ, इतना गुस्सा आया कि कौन सा क्षण था कि मैंने इसको अपने रूम में रख लिया। फिर पूछते हैं सेठ जी अच्छा बता मुझे अब तुझे क्या दिख रहा है? कहते हैं इतना सुंदर पहाड़ है, ओ माय गॉड ये सनराइज हो रहा है। तो बोलते ये सब कुछ हो रहा है मैं क्या कर रहा हूं? सेठ जी हो गए दुखी, डॉक्टर का वेट कर रहे थे, अलार्म बजा दी जोर से, डॉक्टर आ जाओ जल्दी से, वापस आए, डॉक्टर को कहते हैं तुरंत के तुरंत इसको इधर से शिफ्ट करो। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है एक बार मैं इसको चेकअप कर लूं, और जैसे ही इसको चेक करते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं ही इज नो मोर। उसे आश्चर्य हुआ सेठ जी को, कहते कि ये क्या, अभी तो मुझसे बात कर रहा था, अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब इसको हुआ क्या है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं इतने समय से 12 घंटे आप साथ थे, आपको ये समय भी नहीं मिला कि उसका नाम क्या है, उसे हुआ क्या? तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे ही थोड़ा मैं बिजी था। तो कहते हैं सेठ जी इसका बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में इसने अपनी आंखें खो दी। तो बोलते ये तो मुझे बोल रहा था कि बारी में से बड़ी बाहर चीजें दिख रही है इसे। तो हंसने लगे डॉक्टर और चले गए। उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि सेठ जी के पास पैसा होते हुए वह जिंदगी जी के ना जी सके, और वह व्यक्ति जो आंखें नहीं थी उसने बिना देखे ही जीवन को जीना देख लिया। देखिए हमारा नजरिया हमें बनाता है, ये स्टोरी आपके सामने इसलिए थी क्योंकि नजरिया ही हमें बनाएगा। अब मैं अपने वक्तव्य को पूरा करने से पहले आशा रखती हूं कि कम समय में आपके समक्ष जो चीजें बता पाई हूं वह आप आने वाले दिनों में अपने जीवन में जरूर डालेंगे। आबू के सुंदर वादियों में और स्पेशली जब ठंडी हवाएं चल रही हो तो आसपास बहुत सुंदर पहाड़ थे, और बीच में उस दो पहाड़ के बीच में दो पत्थर पड़े हैं, उस पत्थर के बीच में एक छोटा सा मेंढक बैठा है। अब आपको लगेगा इतने बड़ा पत्थर और इतना अच्छा आबू और उसमें छोटा मेंढक क्या कर रहे है? वो छोटा सा जो मेंढक है थोड़ा ग्रीन कलर का, थोड़ा इस कलर का गोल्डन, उसका नामकरण तो करना ही चाहिए, और उसका नाम है मोमो। खाने वाला मोमो नहीं, वो सीरियसली छोटा मेंढक है, उसका नाम है मोमो। अपनी कास्ट में सबसे सुंदर दिखने वाला मेंढक है वो। हजार लड़कियां उस पर मरती है क्योंकि वह बहुत ही स्ट्रांग है। वह अपने समाज में कहता है, ध्यान से सुनिएगा, वह अपने समाज में कहता है कि मैं हूं मोमो और मैं जो पहाड़ों के बीच में तुम्हें दिख रहा हूं, ये जो बड़ा पहाड़ तुम्हें दिख रहा है, इस पे मैं टॉप पे चढ़ने वाला हूं। तो जैसे आप लोगों को मन में हंसी आ रही है और आश्चर्य भी हो रहा है कि क्या इस मंच से मैं छोटे से मेंढक की बात कर रही हूं। वह अपने समाज में कहता है कि मैं इस पहाड़ के टॉप पे चढ़ने वाला हूं, तभी समाज के अध्यक्ष आते हैं और कहते हैं, बताइए मोमो साहब, आप क्या सोच रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं इस पहाड़ के टॉप पे चढ़ने वाला हूं। तो समाज के अध्यक्ष कहते हैं, आपकी तबीयत ठीक है? ये पहाड़ इतना ऊपर है और आप ना भूलें ये बात कि आप मेंढक हैं। आपको अगर कूद कूद के भी जाना होगा तो कुछ महीने नहीं, 2 साल लग सकते हैं। वहां समाज की बात पूरी होती है, वो सोचता है ये समझते नहीं मुझे, वो अपने माँ बाप के पास जाता है। उसकी माता, मोमो की माता, खाना बना रही थी और तभी वो कहता है कि माँ, मैं ना उस पहाड़ पे चढ़ना चाहता हूं। तो माँ उसकी तरफ देखती है कि मुझे लगता है आज तू बहुत काम करके आया है, मैं तेरे को ना थोड़ा खाना और दूंगी। वो तो ये भी नहीं समझती मुझे, पिताजी आप तो बहुत समझते हो क्योंकि आप बोलते हो कि मेरा और आपका ब्लड ग्रुप एक है, तो आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। मैं ना उस पहाड़ के टॉप पे जाना चाहता हूं और ये लोग कोई समझ नहीं रहा मुझे। पिताजी कहते हैं, मैं तुझे बहुत अच्छे से समझता हूं, मैं तेरी बिल्कुल बात समझ गया हूं, तुझे पॉकेट मनी एक्स्ट्रा चाहिए ना? खत्म हो गई बात। अब उसने सोचा ये सब परिवार ना अब क्या करें, मुझे एक व्यक्ति जो मेरी साथी है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो तो मुझे समझ ही जाएगी। वो तुरंत फोन लगाता है, छोटा मेंढक मोमो, वो अपने गर्लफ्रेंड को फोन लगाता है। उसका गर्लफ्रेंड का नाम मोमी है। वो बोलता है, हाय तू कैसी है? तो बोलते, मैं एकदम ठीक हूं, बताओ। कि मैं अपना एम डिसाइड कर लिया, मैं पहाड़ के टॉप पे चढ़ने जा रहा हूं और तुम ना मुझे हेल्प करो क्योंकि पेरेंट्स और समाज तो कर नहीं रहा। तो मोमी सोचती, सीरियसली आप टॉप पे चढ़ोगे? टुमारो मॉर्निंग एक पार्टी है मोमो, तुम जरूर आना, एंड दैट इज अवर ब्रेकअप पार्टी। ओ गॉड। अब फाइनली ये डिसाइड होता है कि एक रेस होगी जिसमें मोमो और कुछ और मेंढक भी दौड़ेंगे और पहाड़ के टॉप पे चढ़ेंगे। समाज के अध्यक्ष वैसे ही गन लगाते हैं। वो गन तो क्या होगी, 2 पत्थर टक करके बजाते हैं, उनकी वही गन है। वो 2 पत्थर छोटे से उन्होंने टक करके बजाया और दौड़ शुरू होती है। मेंढक दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और तभी समाज के अध्यक्ष बोलते हैं, फिर से सोच लो, तुम्हारा अगर कोई भी खर्चा हुआ, टांग वांग टूटी, तो समाज नहीं देगा पैसे। फिर भी वो दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। माँ बाप कहते हैं, देख लो, तुम्हें पहले समझाया था, हमारी नाक तो कटाओगे सही तुम। फिर भी वो दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। गर्लफ्रेंड कहती है, देखो, दिस इज लास्ट टाइम आई एम गिविंग अ चीयर अप, ठीक है? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूं, इनको तुम चीयर लीडर्स मत समझ लेना। दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, और आपको पता है वो कहां पहुंचा? वो अपने पहाड़ के टॉप पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। मोमो अपने एम पे पहुंचा, वो बिल्कुल पहुंचा। और पास में उसके साथ जो उसका फ्रेंड था, वो हाफते हाफते आता है और कहता है, मोमो क्या हुआ, तू कैसे पहुंचा यहां पर? तो ध्यान से देखेगा उसने क्या बोला। वो मंच पे खड़ा था क्योंकि वो विनर था, और जैसे उसका टर्न आया कि वो कैसे यहां पहुंचा, तो उसने देखा, उसने कहा बाद में कि मुझे सुनाई नहीं देता। इससे जिंदगी में हम सबका कोई एक एम है, हम हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। जब माँ बाप कहेंगे कि बेटा तू ठीक है, थोड़ा पॉकेट मनी ले ले, पर अपना एम को थोड़ा नीचे ले आ। समाज के अध्यक्ष कहेंगे कि देखो समाज का प्रश्न है, गर्लफ्रेंड शायद छोड़ भी जाए क्योंकि एम बड़ा है, पर हमेशा याद रखिए आपको सफल होना है, और कोई भी नकारात्मकता या कोई भी ऐसे नेगेटिव विचार आपको, तो क्या आपकी रूह तक को नहीं छू सकते? इसी के साथ अपनी बात को पूर्ण करते हुए दोनों हाथ आप एक साथ उठाएंगे, और क्योंकि सफल होने की सबसे बड़ी सफलता है देश के लिए काम करना, देशभक्ति की भावना से आगे बढ़ना, तो आइए दोनों हाथ एक साथ उठा के कहिए भारत माता की। देखिए 4 बजे से उठे मैं जानती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आवाज कम हो जाए, ठीक है। नाश्ता तो हमने बड़ा अच्छा दिया है, दही भी बहुत लोग खा रहे थे मैं देख रही थी, तो प्रोटीन तो है ही। तो आइए एक साथ 3 बार भारत माता की जय जोर से बोलेंगे, इस तरीके से कि जो पहाड़ के टॉप पे मोमो आपको हेलो तो कर दे। आइए भारत माता की, दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर बनी, सबको अच्छी तरह से गाइड किया और सफलता की चोटी पे पहुंचा दिया। पहुंच गए सभी, मोमो की तरह पहुंच गए। कहीं पढ़ा था कि दो ही प्रकार के व्यक्ति असफल हो सकते हैं, एक वो जो किसी का नहीं सुनते और दूसरे वो जो सबका सुनते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर बनी, इन्होंने खास करके हमें 4-5 बातों पे अटेंशन दिलाया कि अगर सक्सेसफुल होना है तो सही शब्द का चुनाव, समय और स्थिति, मैनर्स और स्पिरिचुअलिटी, और लास्ट इनर पावर। तो ये चीजों पे अगर अटेंशन रखेंगे तो हम सफलता को जरूर पाएंगे। अभी हमारे सामने हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी है, तो चंद्रिका दीदी जी को सब जानते हैं ना, कल मिले। तो दीदी जी की खास सफलता या सक्सेस किस में पता है आपको? हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं यहां चोटी पे पहुंच जाऊं तो मैं सफल हूं, लेकिन दीदी सोचती है मेरे साथ वाले चोटी पे पहुंचे तो मैं सफल हूं। तो जब ये यूथ विंग का इतना कारोबार करते हैं तो दीदी की हमेशा यही संकल्पना होती है, यही इच्छा भी होती है कि मेरे साथ में जो भी है, जो सामने बैठे, जो साथ में, सभी आगे बढ़े और सफल हो जाए। तो दीदी के साथ जो मैंने पर्सनल फील किया है उसको कुछ शब्दों में लिखा है, वो आपके सामने रखता हूं और दीदी को आमंत्रित करता हूं। साकार की संकल्पना, जो हमारे साकार बाबा थे जिनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, आप लोगों ने अभी हिस्ट्री में सुना होगा, तो उस समय से दीदी इस संस्था में है और ये कारोबार चल करा रहे हैं। तो साकार की संकल्पना, विश्वास का निश्चय, हिम्मत की बुनियाद, प्रखरता की आवाज, युवाओं की प्रेरणा, बेजोड़ प्रतिभा की धनी, निर्भयता का आफताब, मर्यादाओं की प्रणेता, अविरल गंगा, कुशल वक्ता और ऊर्जा का पर्याय, ऐसी हमारी चंद्रिका दीदी आपको ब्लेसिंग्स भी देगी और गाइड भी करेंगे। तो चंद्रिका दीदी जी,
ओम शांति। बहुत ही अभूतपूर्व मंच आज का, और आप सभी मेरे परम स्नेही युवा भाई बहने, जीवन के अंदर तन मन धन संबंध आयुष्य परमात्मा और समग्र संसार के साथ स्नेहपूर्ण समझपूर्वक सहयोगपूर्ण रीति से ऐसा जीवन जीना कि जिसमें से हमेशा खुशी झलकती रहे, हम खुश रहे और सारा संसार खुश रहे, उसे हम कहते हैं सफलता का हार, सफलता का कॉन्सेप्ट। हम सभी मिलकर के ऐसी दुनिया लाना चाहते हैं जिसे स्वर्ग कहते हैं, और जहां ये सभी बातें अपनी पूर्ण मात्रा में हैं। आज के दोनों ही वक्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, और हमारी अनसुया बहन जी को भी, और हमारे जीतू भाई जी ने बहुत ही अच्छी तरह से मंच का संचालन किया है। हम सभी जोरदार तालियों से आप सभी को अभिनंदन करते हैं। उनको बुला लें। मैं यहां आई उसके दो दिन के पहले, 15 दिन तक मैंने एक प्रयास किया, फोन या मोबाइल पर बात नहीं किया, और मैंने देखा कि कारोबार चल सकता है कि नहीं। दो बहुत बड़े प्रोग्राम हमारे नजदीक आ रहे थे, लेकिन बिल्कुल फोन या मोबाइल को टच करने बिना मैं बहुत अच्छी तरह से इतना सारा आयोजन करने में सफल हुई हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि कम से कम यहां इस कैंपस में हो, और अगर आप अपने जो भी कॉन्टेक्ट वाले हैं उनको बोल दो कि 2 दिन के लिए हमारे को यहां बात करने का मौका नहीं है, हम स्वयं को एक शिस्त में अनुभव करना चाहते हैं। मैं 2 दिन के बाद आपसे बात करूंगा, आप करके देखेंगे, आप जीवन की परम शांति को अनुभव करेंगे। जो करना चाहे कर सकते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को भी, बहुत बहुत धन्यवाद।